सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से अमल होगा। तृप्तिदीप प्रकरण में ये चिंतन कर रहे थे कि वो जो चिदाभास है, चिदाभास जब तीन शरीरों के साथ जब तादात्म्य नहीं करता है तो उसमें ज्वर नहीं रहता है। और चिदाभास का मतलब क्या है? कूटस्थ का प्रतिबिंब। तो जब प्रतिबिंब में भोक्तृत्व नहीं रहता है अथवा ज्वर नहीं रहता है तो जो उस प्रतिबिंब का जो बिंब अर्थात कूटस्थ वो तो कभी भी तीनों शरीरों के साथ संबंध करता नहीं है। तो जब चिदाभास में तापत्रय अथवा ज्वर नहीं रहता है तो कुटस्थ में कैसे रह सकता है अर्थात नहीं रह सकता है, ये बताया। तो फिर चिदाभास में जो है ज्वर क्यों प्रतीत होता है तो बताया, वो चिदाभास तीनों शरीरों के साथ तादात्म्य कर लेता है। जैसे कि जल अग्नि के साथ जब संबंध करता है तो जल क्या हो जाता है? तपने लगता है। इसी प्रकार चिदाभास शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है। तादात्म्य कर लेता है का मतलब ये करता है कि ये शरीर मैं हूं, इस तरह का क्या है वो मान करके चलता है। इसे का नाम क्या है? तादात्म्य है। ये शरीर मेरा है अथवा ये शरीर मैं हूं, ऐसा ऐसी दृढ़ भावना करता है कि वो भावना क्या है, मैं शरीर हूं, इस रूप में क्या है वो नजर आने लगती है। साक्षात वो शरीर के रूप में अनुभव होने लगता है उसका, मैं शरीर हूं। जब ऐसा होता है तो शरीर में जो कुछ होता है उसका वो अनुभव करने लगता है, तब वो ज्वर को प्राप्त होता है। इसी प्रकार लिंग शरीर में, लिंग शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है अर्थात लिंग शरीर जैसी हो जाता है। हाँ, सूक्ष्म शरीर कहिए उसको, लिंग शरीर कहिए। तद्वत होने के कारण लिंग शरीर में जो भी कुछ होता है वो ऐसा महसूस करता है कि नहीं, मुझ में ही हो रहा है। इसी प्रकार अज्ञान शरीर, उस अज्ञान की अज्ञान रूप शरीर को भी क्या है अपना स्वरूप मान लेता है, तो कहता है मैं अज्ञानी हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये मात्र किसका फेर है? तादात्म्य का फेर है, संबंध का फेर है। संबंध जैसे करेगा तो ज्वर को प्राप्त होगा, संबंध नहीं करेगा तो ज्वर को प्राप्त नहीं होगा, ये बताया। तो कैसे वो ज्वर को प्राप्त होता है दृष्टांत दिया, जैसे एक कुटुंबी 32वें श्लोक में बताया कि वो जो चिदाभास भ्रांति काल में कैसे ज्वर को प्राप्त होता है तो बता दिया, कुटुंबी अर्थात एक पारिवारिक व्यक्ति, अज्ञानी परिवार का पालन पोषण करने वाला जो ये समझता है कि ये परिवार ही मेरा सब कुछ है, ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय है, उस परिवार में यदि कुछ होता है तो वो अपने ऊपर क्या करता है उसका आरोप कर ले, मान लेता है होता है परिवार में, और मानता किस में है? अपने में। दो पुत्र है तो दोनों पुत्रों को इतना प्रेम करता है, दोनों पुत्र भी उसके साथ बहुत प्रेम करते हैं, परंतु एक चला गया तो क्या कहता है? मेरा एक दाहिना हाथ कट गया। कटा नहीं है पर क्या है? कट गया। दूसरा चला गया तो मेरा बायां हाथ चला गया। पत्नी चली गई तो अब मैं खत्म ही हो गया, अब कुछ नहीं रहा बचा नहीं, जबकि वो सामने खड़ा है, सब कुछ है, पर वो इस तरह क्या है वो मान लेता है। तो वो कुटुंबी एक पारिवारिक व्यक्ति जैसे बोलता है वैसे चिदाभास क्या है बोलने लगता है, मानने लगता है। वो 33वें श्लोक के द्वारा क्या है आपको बताया। 34वां जो श्लोक है उसमें ये बताया जो विवेकी पुरुष क्या है इस चिदाभास को और कूटस्थ को सही तरीके से समझ करके जड़ जो तीन शरीर है उनसे अपने आप को अलग कर लेता है और वो चिदाभास कूटस्थ के साथ क्या है एक ही भूत हो जाता है, अर्थात वो कूटस्थ मैं हूं शरीर मैं नहीं हूं। ऐसा जब वो विवेक के द्वारा निर्णय करता है, ठाम निश्चय कर लेता है वो, तो कहते हैं फिर वो ज्वर को प्राप्त होता नहीं है, अथवा वो उस शरीर के लिए किसी प्रकार की क्रियाएं करता नहीं है, उस शरीर के लिए अथवा शरीर से इतर है उनके लिए वो किसी प्रकार का कोई प्रयास करता नहीं है, वो मात्र अपने स्वरूप में ही स्थित होने का प्रयत्न करता रहता है। एक स्वीकार करना और स्वीकार करके अपने स्वरूप में स्थित होने का प्रयत्न करना और स्वरूप में स्थित होना, ये तीन चीजें अलग अलग है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग वेदांत श्रवण कर रहे, प्रक्रिया ग्रंथ श्रवण कर रहे, तो आपने स्वीकार कर लिया, श्रुति प्रमाण युक्ति अपना अनुभव स्वीकार कर लिया, कि तो अभी भी हम उसमें स्थित हुए नहीं है, अभी भी चल ही रहे, किंतु इतना जरूर होता है स्वीकार करने के बाद जब हमारे सामने कुछ घटना होती है तो उस समय में हम क्या कहेंगे, क्या मानेंगे, क्या अंदर विचार करेंगे, अरे नहीं हमने तो शास्त्र सुना है और युक्ति भी है दिए शास्त्रकारों ने, हाँ एक अपना अनुभव भी हो रहा है, इसलिए मुझे कुछ मेरे सामने कुछ होता है तो मुझे खेद करना नहीं चाहिए। इतना भी विचार आ गया तो मान लीजिए सामने कुछ भी हो जाए तो जैसे एक अज्ञानी व्यक्ति हाय हाय करता है वो करने वाला नहीं है, फिर वो व्यक्ति करेगा क्या, वो उस स्वरूप में स्थित होने का प्रयत्न करेगा, मतलब वो कूटस्थ मैं ही हूं इसका निश्चय करने के लिए प्रयत्न करता रहेगा, तो वो प्रयत्न उसके ऊपर है वो कितना तेजी से प्रयत्न करता है। यदि धीरे धीरे चला चलिए धीरे धीरे हम करते रहेंगे ऐसा समझ करके चलता है तो समय लगेगा, और किसी को लगता है मन नहीं मुझे तो किसी हालत में इसी जन्म में करना है तो वो उसका फिर प्रयत्न ज्यादा ही होगा ना, तो हमारे प्रयत्न के ऊपर है। हाँ वो बताएंगे अभी, वो सब वही बात आएगी अभी, वो प्रयत्न करेगा, बस वो समझ गया अभी, बस अब क्या है हमारा प्रयत्न कितना तेजी से चल रहा है, हम उसके प्राप्ति में कितने लगन से लगे हैं इसके ऊपर है उसकी प्राप्ति अर्थात जल्दी अथवा दूर में, समय लगेगा। यदि हम धीरे से प्रयत्न करते हैं तो समय लगेगा और आप तेजी से प्रयत्न करेंगे तो जल्द से जल्द प्राप्त होंगे। इसी को लेकर के ये 34वें श्लोक में बता दिया कि वो किसी प्रकार का क्या है अपने में ज्वर आने नहीं देता, अर्थात उन शरीरों के साथ अपना संबंध न रखने के कारण उन शरीरों के लिए वो अपने में ज्वर आने नहीं देता है, उसको दूर ही कर देता है। तो देखते हैं हम लोग 34वें श्लोक में, विविच भ्रांति मुज्जित्वा विविच भ्रांति मुज्जित्वा स्वमप्य गणयन् सदा स्वमप्य गणयन् सदा चिन्तयन् साक्षिणं कस्मात् चिंतयन साक्षिणम कस्मात् शरीरम अनुसंज्वरेत्। शरीरम अनुसंज्वरेत्। कहते विविच भ्रांतिम उज्जित्वा, विवेचन करके। किसका विवेचन? अपना भी विवेचन करता है, कुटस्थ का और शरीर त्रयेगा, इसके विषय में क्या विचार करता है, और जड़ शरीर ये तीनों के तीनों इसको जान लेता है कि ये जड़ है और मैं चिदाभास चेतन हूं। क्यों? मैं जो चिदाभास किसका प्रतिबिंब हूं? कुटस्थ का प्रतिबिंब हूं। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? कुटस्थ के समान ही होगा। इसका मतलब कुटस्थ का जो प्रकृति स्वभाव है, स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है। इसलिए मैं चिदाभास कुटस्थ से अलग नहीं हूं, और मैं किससे अलग हूं? तो ये तीनों शरीर से मैं अलग हूं। ऐसा वो निर्णय विचार करके वहां से हट जाता है। वही कह रहे हैं विविच्य भ्रांति मुज्जित्वा स्वम अपि अगणयन, और अपने आप को फिर वो चिदाभास के रूप में ग्रहण नहीं करता, नहीं मैं तो साक्षी ही हूं। तो मन में एक थोड़ा सा शंका हो जाएगी, जैसे दर्पण के सामने जब हम जाते हैं तो उसमें जो प्रतिबिंब है वो कुछ कहता है क्या? कहता नहीं है। अच्छा, वो तो दिखा तो रहा है ना आपको, आपका बिंब जो है कुछ खराबी है, सुधारो। मौन व्याख्याता है थोड़ी देर के समझने के लिए, बस कुछ बोलता नहीं किंतु आपको समझाता है। पर इसमें ऐसा है, एक अलग बात है। अब इसको अवच्छिन्नवाद से और जल्दी समझ लेंगे। जैसे घटाकाश और मठाकाश और महाकाश, बस एक घेराव आ गया है। तो घेराव जैसे घटाकाश में घट का घेराव है और मठाकाश में मठ का घेराव है, किंतु महाकाश का गुण और घटाकाश का गुण कोई अलग है क्या? नहीं है। महाकाश भी जगा देता है और घटाकाश भी जगा देता है, दोनों का स्वभाव एक ही है। अब थोड़ी देर के लिए समझने के लिए आप ये ले लीजिए कि इस उपाधि के घेराव में है हम लोग, है ना, इस घेराव में है। और एक निरुपाधिक जो कुटस्थ, मतलब जो कुटस्थ है वो क्या है, मान लीजिए वो अलग से है। और कुटस्थ कैसा है? अपने से क्या है, बड़ा मान लीजिए उसको थोड़ी देर के लिए, जैसे महाकाश है। अब हम जो इस उपाधि में आ गए तो बस उपाधि में आने मात्र से, जैसे महाकाश के साथ जो है घटाकाश का कोई भेद होता है क्या? नहीं। बस उपाधि छोटी बड़ी इतनी सी बात है, परंतु दोनों का स्वभाव एक ही रहेगा। इसी प्रकार इस उपाधि के घेराव में आया हुआ चैतन्य और जो निरुपाधिक चैतन्य अथवा कुटस्थ लीजिए, तो बस उपाधि के घेराव में, इतने घेराव में आने मात्र से स्वभाव तो नहीं बदलेगा ना। इसी तरह यहां पर कहते हैं जो इस उपाधि के घेराव में आया हुआ चिदाभास, अब उसको अवच्छिन्न लेकर के चलिए तो और स्पष्ट क्या है आपको प्रतीत होगा। क्योंकि चिदाभास कहने से क्या हो जाता है, प्रतिबिंब जैसी बात आ जाती है, और प्रतिबिंब बात आने के बाद मन में शंका होती आ रही, वो तो दर्पण के सामने जैसा हम खड़े हैं वो प्रतिबिंब थोड़ा ना कुछ बोलता, उसको क्या समझे उस प्रतिबिंब को, अब वो कैसे विचार करेगा और कि ये मैं प्रतिबिंब न होकर के मैं बिंब ही हूं, मेरा इस दर्पण के साथ कोई संबंध नहीं है, मुझे इस दर्पण के साथ संबंध नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा ना विचार करेगा प्रतिबिंब। चिदाभास का मतलब प्रतिबिंब, तो फिर ये चिदाभास कैसे करेगा? फिर ये तो करना नहीं चाहिए। आपने तो उसको चिदाभास का मतलब ही वो चिद के जैसे भास होने वाला, तो चिद के जैसे भास होने वाला का मतलब क्या? प्रतिबिंब जैसे हो गया। तो चिदाभास एक जैसा प्रतिबिंब हो गए, वो कैसे इस तरह का विचार करेगा, अपने आप को शरीर तरह से अलग करेगा और मैं और कुठस्थ एक हूं, इस तरह का जो विचार निर्णय कैसे करेगा। तो वो अब प्रतिबिंब न समझ करके अब घेराव में आया है इतना समझ लीजिए, तब वो प्रतिबिंब नहीं रहेगा। क्या समझे? बस घेराव में आया है तो अब कोई एक यत्किंचित भी गुणधर्म बदलेगा? जैसे घटाकाश का जो गुणधर्म है वही मठाकाश का गुणधर्म है। आकाश का मतलब क्या? जगह देना। तो घटाकाश जगह दे रहा है कि नहीं? पानी धरने के लिए दे रहा है। मठाकाश रहने की जगह दे रहा है कि नहीं? तो जगह देना, खाली जो जगह उसका नाम आकाश है। तो खाली जगह तो घट में भी है और खाली जगह मठ में भी है। तो उस खाली जगह जो गुण है उसका, वो बदला नहीं है। इसी तरह जो चैतन्य, वो चैतन्य चाहे छोटी उपाधि में आ जाए चाहे बड़ी उपाधि में आ जाए, उसका अपना गुण धर्म बदलता नहीं है। उसका अपना गुण धर्म क्या है? प्रकाशन करना, साक्षी रूप में रहना, यही उसका अपना गुणधर्म, उसका प्रकृति है, उसकी अपना स्वभाव है। हमेशा क्या है? प्रकाशित करते रहना। तो अब यहां इसलिए चिदाभास क्या करता है, वो उस कुठस्थ से अभिन्न हो लेता। अरे वो कुठस्थ और मैं अलग नहीं है, हम दोनों एक ही है। क्यों? दोनों के गुणधर्म एक है। ये युक्ति से, अनुभव से वो जान लेता है चिदाभास। और शरीर के साथ हमारा कोई मेल नहीं खाता है, इसलिए मैं हमें क्या होना चाहिए? इस शरीर से अलग होना चाहिए। अब तक मैं शरीर के साथ क्या है, तादात्म्य कर रहा था, मुझे पता नहीं था, अब मुझे पता हो गया, अब मैं इस शरीर के साथ संबंध रखूंगा नहीं। क्यों मैं संबंध रखूंगा? और जिसका हमारा कोई जो है मेल ही नहीं है, उसके साथ मैं कैसे रह सकता हूं और उसके लिए मैं कैसे अपने आप को तपा सकता हूं? मुझे तपाना नहीं चाहिए। इसलिए कह दिया कि वो उस शरीर के पीछे तपता नहीं है। चिंतयन साक्षिणम कस्मात शरीरम अनुसंज्वरित, वो उस साक्षी का चिंतन करता है और उस साक्षी को क्या है, वो साक्षी और मैं हम दोनों एक ही है, ऐसा चिंतन करने के बाद कौन ऐसा चिदाभास है कि जो उस शरीर के पीछे अपने आप को तपाएगा, अर्थात नहीं तपाएगा। टीका देख लीजिए। चिदाभास कुठस्थम स्वात्मानम शरीराणि च विविच्य भेदेन ज्ञात्वा तत्सर्वम वास्तवम स्वस्य स्वरूपम इति मन्यत। कहते हैं जी, जो चिदाभास क्या है, कुठस्थम स्वात्मानम, उस कुठस्थ को अपने स्वात्मा रूप में क्या हो जान लेता है। कैसे जान लेता है, किसको अलग करके जान लेता है? शरीराणि च विविच्य भेदेन, ये शरीर त्रय, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों शरीरों को क्या है अलग करके और उस कुठस्थ को आत्म रूप में जान करके क्या है भेदन ज्ञात्वा, ये शरीर अलग है और मैं अलग हूं, ऐसा जान करके कहते ज्ञात्वा तत्सर्वम वास्तवम स्वस्य रूपम स्वरूपम रूपम, अर्थात वास्तविक मेरा कुठस्थ स्वरूप है, मेरा स्वरूप शरीर नहीं है, इससे मेरा किसी भी प्रकार से कोई संबंध बनता नहीं है, हट जाता है वहां से। मन्यत इति उक्ताम भ्रांतिम परित्यज्य, और जो कही इससे पूर्व में जो भ्रांति हो रही थी उसको कि शरीर मैं हूं, ये लिंग शरीर मैं हूं, कारण शरीर मैं हूं, ये जो भ्रांति थी उस भ्रांति को त्याग देता है, हटा देता अपने भीतर से। परित्यज्य स्वस्य अभाव रूपत्व ज्ञानिन स्वस्मिन् नापि आदरम अकुर्वन स्वस्य निजम रूपम ज्वरादि रहितम साक्षिणम सदा चिंतयन कस्मात् शरीरम अनुसंज्वरे। कहते हैं स्वस्य अभाव रूपत्व ज्ञानेन, वो जो चिदाभास है वो अपने आप का क्या कर देता है, अभाव कर देता है। अब मैं चिदाभास नहीं हूं, मैं कौन हूं, कुटस्थ हूं। पहले क्या करता था, कुटस्थ से अपने आप को अलग समझता था, अब मैं जीव नहीं हूं, मैं कौन हूं, कुटस्थ हूं। ऐसा क्या है वो जान करके स्वस्य अभाव रूपत्व ज्ञानेना, अरे मैं चिदाभास, वास्तविक मैं चिदाभास नहीं हूं, मैं जीव जीव न होकर के मैं शिव हूं। हाँ वही स्वस्य अभाव रूप ज्ञानेना, अभाव रूपत्व ज्ञानेना, स्वस्य अभाव रूपत्व ज्ञानेना, अभाव रूपत्व ज्ञान, क्या समझना, त्वा नहीं है, त्व त्व, स्वस्य अभाव रूपत्व ज्ञानेना, मतलब अपने आप को अब मैं चिदाभास जो पहले जो मानता था, अब चिदाभास, चिदाभास रूप जो अभाव का ज्ञान उसके भीतर आ जाता है कि अब मैं चिदाभास नहीं हूं, मैंने चिदाभास का जो ज्ञान है उसका अभाव हो जाता है। उस अभाव रूप ज्ञान के द्वारा स्वस्मिन न अपि आदरम कुर्वन, अब वो अपने आप में भी वो आदर करता नहीं है, मतलब मैं जीव हूं, इस रूप में भी क्या है अपने आप को स्वीकार करता नहीं है। पहले जैसे अज्ञान अवस्था में मैं जीव हूं ऐसा बोलता था और क्या करता था, जीवपन का आदर करता था, मैं तो एक जीव हूं, मुझे रहने खाने पीने के लिए क्या है, मुझे व्यवस्था करनी चाहिए, ये शरीर मैं हूं, तो उस शरीर का आदर करता था, जब शरीर मैं हूं तो इसको बढ़िया साफ सुथरा रखना चाहिए, इसको टिप टॉप रखना चाहिए, ये जैसा आदर करता था अब वो आदर उस तरह का देता नहीं है, बस जैसे चल रहा है चल रहा है, बस कोई आदर नहीं देता। आकुर्वन स्वस्य निजम रूपम ज्वरादि रहितम, मेरा अपना स्वरूप कैसा है, ज्वरादियों से रहित है, साक्षिणम सदा चिंतयन, क्या करता है वो अपना जो रूप साक्षी कुटस्थ उसका सतत चिंतन करता रहता है वो, और ऐसा जो चिंतन करने वाला उसके विषय में कहता है कैमुतिक न्याय के द्वारा, कस्मात शरीरम अनुसंज्वरित, वो किस कारण से उस शरीर के लिए तपेगा, अथवा कोई तपेगा, नहीं तपेगा, जो जिसने ऐसा जान लिया वो उस शरीर के लिए तपेगा नहीं है। ज्वरवत शरीरम अनु श्रुत्य स्वयं कस्मात संज्वरित, उसका विश्लेषण कर रहे, स्पष्ट कर रहे, ज्वरवत शरीरम अर्थात ज्वर वाला शरीर, तापत्रय वाला शरीर, उस शरीर के पीछे कैसे जा सकता है, अर्थात वो नहीं जाएगा, और जब उसके पीछे नहीं जाएगा तो उसको ज्वर की कोई संभावना नहीं है, संताप की संभावना नहीं है। ज्वरवत शरीरम अनुसृत्य स्वस्यम कस्मात संज्वरित, वो तपे तपा हुआ शरीर, उस तपे हुए शरीर के साथ उसके पीछे कैसे जाएगा, अर्थात नहीं जाएगा, क्यों अपने आप को उस शरीर के पीछे तपाने की कोशिश करेगा, वो मूर्ख ही होगा, वो जो शरीर के पीछे क्या अपने आप को तपाएगा, किंतु जिसने जान लिया वो शरीर के पीछे अपने आप को तपाता नहीं है। आगे कहते हैं भ्रांति ज्ञान तत्व ज्ञान यो हो ज्वर तद अभाव कारणत्वं दृष्टांत प्रदर्शनेन स्पष्टयति। भ्रांति ज्ञान और तत्व ज्ञान, भ्रांति ज्ञान के द्वारा ज्वर आता है और तत्व ज्ञान के द्वारा उस ज्वर का अभाव हो जाता है, अर्थात वो भ्रांति ज्ञान किसका कारण है, ज्वर का कारण है, और तत्व ज्ञान किसका कारण है, ज्वर के अभाव का कारण है। इसी को दृष्टांत के द्वारा प्रदर्शित करते हुए स्पष्ट कर रहे हैं। अयथा वस्तु सर्पादी अयथा वस्तु सर्पादी ज्ञानम हेतु पलायने ज्ञानम हेतु पलायने रज्जु ज्ञाने हि धी ध्वस्तौ रज्जु ज्ञाने हि धी ध्वस्तौ कृतमप्यनुशोचति कृतमप्यनुशोचति दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं कि जहां भ्रांति ज्ञान होता है वहां ज्वर होता है, जहां भ्रांति ज्ञान नहीं रहता है अर्थात तत्व ज्ञान रहता है वहां पर क्या ज्वर नहीं रहता है, जहां भ्रांति ज्ञान वहां ज्वर रहेगा। कहते हैं अयथा वस्तु सर्पादि ज्ञानम। देखिए यथावत और अयथावत, यथावत किसको कहते हैं, जो जैसी वस्तु है वैसे दिखना उसको क्या कहना यथावत, और जो जैसी वस्तु है वैसे न दिख करके दूसरी ही देखना उसको कहते अयथावत। तो अयथा वस्तु सर्पादि ज्ञानम, जैसे पड़ी थी रस्सी किंतु अब दिखा क्या सर्प, अब मने यथावत नहीं ज्ञान में क्या है अयथावत ज्ञान है, रस्सी के जगह रस्सी में ही क्या हमें सर्प दिख रहा है वो कैसा ज्ञान है अयथावत ज्ञान है। तो जो अयथावत वस्तु सर्पादि ज्ञानम, वस्तु है रस्सी किंतु किस वस्तु का ज्ञान हो रहा है सर्परूप वस्तु का ज्ञान हो रहा है, तो कहता है ऐसा जो ज्ञान अयथा वस्तु सर्पादि ज्ञानम, तो जो अयथा वस्तु कौन सर्प ज्ञान, ये अयथा वस्तु सर्प ज्ञान है वो ज्ञान क्या करता है हेतु पलायने, पलायन का हेतु बनता है वो, डर का हेतु बनता है, पसीना छूटने का हेतु बनता है, देखते ही घबरा जाता है अरे बड़ा भयानक काला सर्प है ये, एकदम देखते ही दरवाजा खोलते ही देखता है पड़ी थी रस्सी किंतु उसने काला सर्प दिखाई दे रहा है उसको, एकदम अचानक पसीना आ गया वहां से भाग गया पलायन किया, अब पलायन के साथ साथ चलते चलते मान लीजिए कहीं चौकट भी लग जाती है पैर को, कहीं सिर पर ही लग जाता है पसीना पसीना हो जाता है, तो किस ये किस इसका कारण क्या है अयथावत ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान नहीं है भ्रम ज्ञान, उस ऐसे भ्रम ज्ञान के कारण अयथावत ज्ञान के कारण वो क्या हो गया भागने लगा, तो भागने का कारण हो गया अयथावत ज्ञान। किंतु कहते हैं रज्जु ज्ञाने ही धी ध्वस्तौ, किंतु भाग रहा था तो किसी ने कहा क्यों भाग रहा है, सर्प है दिखाओ हमको, चलो तार से ले आए, अरे यार क्या ये सर्प थोड़ो नहीं तो रस्सी है, तो कहता अरे हाँ सही बात है ये तो रस्सी है, तो वो अपने आप को क्या करता है जब रज्जु का ज्ञान हो जाता है तो जो पहली बुद्धि थी सर्प है वो हट जाता है, तो हटने के साथ फिर कहता है फालतू का मैं भाग रहा था फालतू का मैं घबरा रहा था ये तो रस्सी है, वो अपने आप को क्या है बोलता है मैं फालतू ही भाग रहा था मुझे तो घबराना नहीं चाहिए था, ऐसा बोलता है वो। तो इस दृष्टांत के द्वारा ये समझाना चाहते हैं यथावत ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान भ्रांति ज्ञान क्या करता है मनुष्य को दुख देता है, और यथार्थ ज्ञान मनुष्य को दुख देता नहीं है उसको शांत रखता है, उसमें किसी प्रकार की जो है चंचलता निर्माण नहीं करता है। रजुज्ञाने ही धी ध्वस्तो। जब रजुज्ञान होता है तो पहली वाली जो धी अर्थात बुद्धि अर्थात ज्ञान वो ध्वस्त हो जाता है। ध्वस्त होते ही क्या मन में सोचता है, कृतम अपि अनुशोचति, अरे मैं फालतू में दौड़ रहा था, यदि मैं सही जान लेता तो पैर को क्या है चौखट नहीं लगती, फालतू में दौड़ रहा मैं, कितना मूर्ख हूं मैं, पहले ही देखते तो मैं ऐसा नहीं होता, इस तरह का जो है वो सोचने लगता है। टीका देख लीजिए, रजवादो कल्पितस्य सर्पादेहे ज्ञानम पलायने कारणम भवति। कहते हैं रजू में क्या है, सर्प की कल्पना जब करता है अर्थात सर्प का जब ज्ञान होता है, जब कल्पना करे तो ज्ञान होगा, जिसकी कल्पना करोगी उसी का ज्ञान होगा, तो रज्जु में क्या है, रस्सी में सर्प की कल्पना हो गई तो सर्प का ज्ञान हो गया, तो सर्प का ज्ञान होने के बाद वो सर्प का ज्ञान किस में कारण हो गया, तो कहते पलायने कारणम, भागने का कारण हो गया डर के मारे। आदि शब्देन स्थानो कल्पित चोरो गृह्यते, आदि शब्द आए ना सर्पादि, तो किसी को और कुछ दिखता होगा, ये तो मात्र क्या है रज्जु में सर्प का भ्रम ज्ञान दिखाया। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सफेद खूंटा क्या है किसी कोने में गाड़ दिया है, जैसे गांव देहात में क्या होता है किसी की अपनी जमीन होती है तो एक कोने में बड़ा पत्थर गाड़ दिया जाता है, उसको सफेद चुना दिया जाता है, क्यों, क्योंकि उसके बगल से कोई भी जाएगा तो वो खेती से नहीं जाएगा, उसके बगल होकर के जाएगा। और शाम के समय में जो थोड़ा मंदा अंधकार हो गया तो दूर से कोई अचानक मान लीजिए जो कभी जानता नहीं है और इतना बड़ा पत्थर है ऐसा सफेद, वो सब यहां पर भूत है क्या पता नहीं, ये दिख रहा है सफेद, अचानक आ गया उस गांव में, देखा रे यहां तो भूत खड़ा है सफेद सफेद दिख रहा है, तो वो वास्तविक है तो पत्थर चुना लगा हुआ कि दो क्या सोच रहा, अरे यहां लग रहा है भूते देखो सफेद सफेद यहां पर कोने में खड़ा है, और डर के मारे क्या वहां से भाग जाता है। किंतु जब कोई भाग रहा है तो उसी गांव का कोई आदमी देखता, अरे अरे क्यों भाग रहे हो क्या हो गया, अरे वहां देखो वहां भूत है, कहां दिखा, अरे वो भूत नहीं है, वो किसी की जमीन है, उसने अपने जमीन के कोने में क्या किया, उसने बड़ा पत्थर गाड़ दिया, उसको चूना लगाया, तुमको भूत लग रहा है, चलो मैं तुमको दिखाता भूत है क्या, जब दिखाता है तो उसका मन का डर भाग जाता है और सोचने लगता है अरे मैं फालतू में ही डर रहा था। रज्वादि ज्ञानेन सर्पादि बुद्धि निवृत्तो, रज्जु के ज्ञान से सर्प बुद्धि अर्थात सर्प ज्ञान हट जाता है, निवृत्त होने पर तदपि पलायनम अनुशोचति, वो जो पलायन कर रहा था ज्ञान अवस्था में तो उसके विषय में सोचता है, वृथा कृतम मया इति अनुतप्यते, अरे बेकार का ही मैं जो है डर रहा था, बेकार का ही भाग रहा था मैं, बेकार का ही मैं तप रहा था डर रहा था, ऐसा वो मन ही मन क्या है वो सोचता है विचार करता है। आगे कहता है साक्षिणम सदा चिंतयन, कहते हैं साधक को साक्षी का सदा हमेशा क्या है चिंतन करना चाहिए। इति उक्तार्थम दृष्टांतेन स्पष्टयति, उक्तार्थ मतलब ये जो अभी अर्थ कहा है किस श्लोक में, ये जो 34वें श्लोक में जो बताया कि साक्षी का चिंतन करना चाहिए किस रूप में, वो साक्षी मैं हूं, ऐसा चिदाभास जीव को क्या करना चाहिए चिंतन करना चाहिए, वो साक्षी मैं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, मेरा स्वरूप तो साक्षी है, इसलिए क्या है मुझे शरीर के साथ लगाव नहीं करना चाहिए, मुझे लगाव तो मेरे कुटस्थ के साथ ही होना चाहिए, और उस कुटस्थ का चिंतन करे कि वो कुटस्थ कैसा है तो वैसा ही मैं भी होगा हूं, क्योंकि जब कुटस्थ मेरा स्वरूप है तो जो कुटस्थ का स्वरूप है वो भी मेरा ही होना, मेरा भी वही होना चाहिए, तो कुटस्थ का चिंतन करने के लिए कुटस्थ का स्वरूप तो याद में होना चाहिए ना, पता होना चाहिए ना, तो उस कुटस्थ का चिंतन करेगा वो, पहले कुटस्थ को जान लेगा कि कुटस्थ का क्या स्वरूप है, वो जानेगा, जान करके उस कुटस्थ का चिंतन करेगा किस रूप में, अभेद रूप में। सो अहम, वह कुटस्थ मैं हूं, ऐसा वो चिंतन करना चाहिए। तो अब उसको जो है दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, स्पष्टयति। मिथ्याभियोग दोषस्य, मिथ्याभियोग दोषस्य प्रायश्चित्त प्रसिद्धये, प्रायश्चित्त प्रसिद्धये क्षमापयन्निवात्मानम्, क्षमापयन्निवात्मानम् साक्षीणम् शरणम् गतः, साक्षीणम् शरणम् गतः। देखिए, अपने आप को शुद्ध करना है, क्योंकि पहले अब हमने क्या किया है, अनादि काल से पता नहीं है वो कब से, हम लोग जो अपना नहीं उसको हम अपना मान रहे हैं, जो अपना नहीं उसमें हम अपना अधिकार कर बैठे हैं, और जो वास्तविक अपना है उसको हम अपना नहीं मान रहे। और दूसरी बात, जो अपना है उसको और दूसरा ही कुछ मान के बैठे हैं, तो ये सब क्या आ गए हमारे भीतर, दोष आ गए। अब इन दोषों का क्षालन कैसे होगा, क्योंकि दोष का क्षालन करे बिना आप किसी से एक हो नहीं सकते। जैसे यहां पर दृष्टांत देते हैं, मिथ्याभियोग दोषस्य प्रायश्चित्त प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है। मान लीजिए आप किसी के ऊपर मिथ्या आरोप लगाया, अब मिथ्या आरोप लगाने के बाद जो है सामने वाला भी क्या है, दुखी हो गया। जब दुखी हो गया, आरोप लगाया आपने किसी के ऊपर, तो उसका मन भी आपके प्रति क्या होगा, मलिन होगा ना। तो जब मलिन होगा तो क्या दोनों मिलेंगे कभी, फिर एक हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। किंतु अपना उसके प्रति मन शुद्ध करना है, और उसको भी अपने प्रति अच्छा भाव जगाना है, उसको भी अपने प्रति क्या है, एक ही भाव होने का क्या है, अवसर देना है। तो क्या करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी उसको जाकर, अरे मैंने अपने ऊपर आपके ऊपर व्यर्थ ही आरोप लगाया, सॉरी क्षमा कर देना हमको। ये कहते ही क्या हो जाता है, हम शुद्ध हो जाते हैं, क्या है, हम शुद्ध हो गए, क्योंकि समझ में आया कि सामने वाला व्यक्ति गलत नहीं है। जब हम उसके ओर उसके प्रति शुद्ध हो गए, तो अब हमें उससे कोई डर रहता नहीं है। किंतु इतना मात्र से काम नहीं चलने वाला, हमें समझ में आ गया कि ये शुद्ध व्यक्ति है, हमको व्यर्थ ही आरोप नहीं करना चाहिए था, तो चलो हम तो शुद्ध हो गए, इतनी मात्र से काम नहीं चलेगा। अब उसके बारे में वहां जाकर उसको माफी मांगेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, आपके प्रति शुद्ध हो जाएगा। अरे नहीं, इसने अब मेरे प्रति गलत भावना क्या हटा दी है, अब मेरे प्रति इसकी अच्छी भावना हो गई, तो क्या हो जाएगा, वो आपके साथ मिल लेगा। इसी तरह यहां पर भी कहते हैं कि चिदाभास को क्या करना चाहिए, आज तक जो कुटस्थ के बारे में जो कुछ भ्रम से समझ रहा था, वो अब उसको समझना नहीं है। तो करना क्या है कि उस कुटस्थ के शरण जाना है, और उस कुटस्थ के बारे में ये कहना है, सोचना है कि अब कुटस्थ मतलब परमात्मा ही हो गया ना, ब्रह्म है परमात्मा। हे प्रभु, आज तक मैं अपने आप को आपसे अलग समझता था, मैं अपने आप को क्या है, तुच्छ समझता था, और आपको बड़ा समझता था, आपको मैंने परिच्छिन्न कर दिया था, आप मात्र क्या है, एक मूर्ति में है, अथवा आप मेरे से अलग है, मैं एक छोटा हूं, मैं दास हूं। तो इसी क्या हो गया था, उस परमात्मा को परिच्छिन्न कर दिया था ना। तो जब उस परमात्मा के सामने ये कहेंगे कि अब ये मेरे से बड़ी भूल हो गई, अब हे प्रभु हम दोनों अब अलग नहीं है, हे प्रभु आप किसी को कष्ट देने वाले नहीं है, आप और हम एक ही है, मेरे विषय में आपके विषय में जो भ्रांति थी अब वो भ्रांति नहीं है। तो हमने ये कह करके अपने आप को क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया। और जैसे ही शुद्ध हो जाते हैं हम, तो सामने वाला भी क्या है, अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। और जैसे ही शुद्ध हो जाते दोनों मिल जाते हैं, दोनों का जब एक भाव बन गया तो मिल ही जाते अपने आप। इसी को लेकर के दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं। मिथ्या अभियोग दोषस्य, जो मिथ्या ही क्या है, आरोप लगाया, अभियोग लगाया किसी व्यक्ति ने मान लीजिए, और जब उसको पता लग गया कि नहीं ये दोषी नहीं है, व्यर्थ हम लगा रहे आरोप, तो फिर उसके लिए अपनी शुद्धि के लिए वो क्या करता है, प्रायश्चित करता है। तो प्रायश्चित का प्रकार क्या है, बस जाके माफी मांगना, यही उसका क्या है, प्रायश्चित है कि मेरे से भूल हो गई, मैंने अपने आप क्या है व्यर्थ आपके ऊपर आरोप लगाया। इतना कहने मात्र से क्या हो गया, आपका प्रायश्चित हो गया, आप शुद्ध हो गए। उस समय में आपको जब प्रायश्चित माफी मांगते हैं, हमसे क्षमा कर देना हमको गलती हो गई हमसे, उतने कहने मात्र से आपको आनंद होगा, उतने कहने मात्र से आप तत्काल स्थिर हो जाएंगे, उतने कहने मात्र से आपके भीतर जो मान्यता के कारण जो बीमारी आ गई, ब्लड प्रेशर हाई होना अथवा मन की विकृति आना, तत्काल क्या हो जाती, वो हट जाता है। वही कह रहे प्रायश्चित, प्रसिद्ध है ये, प्रसिद्ध है। क्षमापयन इव आत्मानं साक्षिणं शरणं गतः, तो क्या है, जैसे उसको क्षमा करके क्या हम उसके शरण में जाते हैं, जिसके प्रति हमने गलत भाव रखा था, पता लग गया वो तो अच्छा व्यक्ति है, तो हम शरण गए उसके। और शरण जाने के बाद हम क्या करने लगे, अब उसके साथ रहने लगे। जिस व्यक्ति के प्रति हमारा गलत भाव था, उसी व्यक्ति को हमने जान लिया कि ये गलत व्यक्ति नहीं है, ये मेरे लिए अनुकूल है, इससे मेरा हित होगा, तो क्या करेगा, क्षमा मान करके उसके शरण में रहेगा ना, साथ हमेशा उसके साथ रहेगा वो। जब उसके साथ रहेगा तो उसके अंदर के गुण, उसका जो प्रभुत्व उसको प्राप्त होगा कि नहीं, जरूर होगा। इसी तरह चिदाभास भी क्या है, अपने आपको क्या है दोष जिता रहे, मैंने आज तक बहुत ही गलत काम किया, मैं अपने आप को अलग समझ रहा था, कुटस्थ से कुटस्थ को अलग समझ रहा था, मैं अपने आप को अलग समझता था, अब ये मुझे करना नहीं है। तो अब उस चिदाभास की क्षमा माफी क्या चीज है, वो जाकर कहेगा हे कुटस्थ मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आज तक मैं आपसे अलग मान रहा था। तो क्षमा क्या है, बस सतत उसका चिंतन करना आत्म रूप से उस कुटस्थ का, यही क्या है उस क्षमा है, उसको क्षमा मांगना है ना, उससे क्षमा मांगने का मतलब बस उसके शरण जाना, यही क्या है क्षमा है। वही कह रहे साक्षिणम शरणम गतः, अपने आप को क्या है साक्षी में समर्पित कर दे। और जब साक्षी में समर्पित हो जाएंगे तो साक्षी का चिंतन होता ही रहेगा, जो जिससे समर्पित हो जाता है वो उसका चिंतन करता रहता है। जैसे एक स्त्री अपने किसी पति में क्या है समर्पित होगी तो पति का ही चिंतन करेगी, कोई भी किसी के शरण में जाता है वो उसी का चिंतन करता रहता है। तो इसी तरह जो चिदाभास है साक्षी के शरण में जाता है तो उसी का ही चिंतन करेगा। साक्षी के शरण में जाना ही क्या है, अपनी शुद्धि करनी है, माफी मांगनी है, और वो साक्षी के शरण में जाते ही क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। क्योंकि तो संग का परिणाम होता है, जिसके शरण में गए इसका मतलब आप उसके संग कर रहे हैं, और जिसका संग करोगे वो उसका परिणाम आपके ऊपर होगा, तद्वत गुण आ जाएंगे। वही कह रहे हैं, टीका देख लीजिए। यथा लोके मिथ्याभियोग करता तद दोषस्य प्रायश्चित्त सिद्ध्यर्थम मिथ्याभियुक्तम पुनः पुनः क्षमापयति। कहता है लोक व्यवहार में देखा जाता है किसी ने मिथ्या ही अभियोग अर्थात मिथ्या ही आरोप लगा लिया किसी व्यक्ति विशेष में, अच्छा पता लग गया कि अरे नहीं मैंने ये तो व्यक्ति गलत नहीं, व्यर्थ ही मैं इसके ऊपर आरोप लगा रहा हूं, तद दोष है। अब दोष तो लग गया, हमने आरोप लगाया तो दोष हो गया ना हमारा, फिर उस दोष को तो अब हटाना है, शुद्ध होना है उसके प्रति, और उसको भी अपने प्रति शुद्ध करना है। तो कहते तद दोषस्य प्रायश्चित्त सिद्ध्यर्थम, उस दोष को क्या है हटाने के लिए वो प्रायश्चित्त करता है। फिर प्रायश्चित्त करता क्या है तो कहता है मिथ्याभियुक्तम पुनः पुनः, जो मिथ्या आरोप लगाया था जिसने, वो व्यक्ति क्या करता है पुनः पुनः क्षमा पयती, अरे हमसे गलती हो गई हमसे माफ कर देना, हमसे गलती हो गई माफ कर देना। तो ऐसा जब बोलता है तो वो अपने आप को शुद्ध करता है और सामने वाले को भी अपने प्रति निर्मल बना देता है। एवं अयम चिताभास हो, वहां जैसे निर्मल हो जाते दोनों, तो जैसे ही निर्मल हो जाते तो दोनों एक होंगे कि नहीं, स्वाभाविक एक होना ही होना। इसी तरह चिदाभास एवं अयम चिदाभासोपि, ये चिदाभास ही क्या है साक्षिणी असंगात्मनी, वो जो साक्षी असंगात्मा उसमें उसके ऊपर क्या आरोप लगाया था भोक्तृत्वादी आरोप, उसने भोक्तृत्वादियों का आरोप लगाया था, करता है भोक्ता है, कर्ता कर्म करण समादान संप्रदान आपादान अधिकरण, ये सब का आरोप लगाया था उसने। तो कहता है ये जो आरोप लगाया था मिथ्या है, तो भोक्तृत्वादि आरोप लक्षण मिथ्या अभियोग, ये क्या आरोप, ये दोष है। वो कर्ता नहीं है उसको कर्ता मानना, वो भोक्ता नहीं उसको भोक्ता मानना, हा? तो ये क्या है दोष है ना, आरोप लगाना व्यर्थ है किसी को पर वो दोष है। तो उस दोष से निवृत्त होने के लिए वो प्रायश्चित्त करेगा, प्रायश्चित्त अर्थम, वो प्रायश्चित्त करने के लिए क्या करता है वो चिदाभास साक्षिणम आत्मानम क्षमापयन इव शरणम गत, उस साक्षी आत्मा में क्या है जैसे क्षमा मांगने वाला व्यक्ति क्या करता है जाकर के सरेंडर कर देता है, इसी प्रकार चिदाभास भी क्या है उस साक्षी में समर्पित होकर के जाता है तो अपने आप शुद्ध हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। चलिए आगे के विषय में कल करते हैं। हरिओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।